ओम शांति। कल की अव्यक्तवाणी मुरली थी 22 फरवरी 2009 की, रिवाइज डेट, जिसमें कुछ ही भाग लिया गया था और जो हम सबने कल शाम को सुनी। तो आज हम उसी मुरली का थोड़ा सा चिंतन करेंगे। एक पादरी फादर चर्च का एक बार सुबह सुबह जल्दी में जा रहा था। उसे किसी चर्च में प्रवचन करना था, तो वो त्वरा से जल्दी जल्दी में जा रहा था और जाते जाते अचानक किसी खाई से उसे एक आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसने देखा कौन है, तो देखा कि एक आदमी है, घायल है, गिरा हुआ है और उसकी छाती में छुरा किसी ने भोंक दिया है। तो उस पादरी को लगा जाऊं और इसकी मदद करूं, पर फिर लगा कि लेक्चर के लिए लेट हो रहा है, अगर इसके चक्कर में रह गया तो जो क्लास करानी है, जो लेक्चर देना है, प्रवचन करना है, वो रह जाएगा, उसमें लेट हो जाएगा। तो उसने सोचा छोड़ो इसको, मैं जाता हूं। और तब वो जो व्यक्ति घायल पड़ा था उसने जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो उसने ध्यान नहीं दिया, पादरी आगे बढ़ता गया और फिर उस व्यक्ति ने पीछे से जोर से चिल्लाया कि मुझे पता है तुम कहां जा रहे हो, तुम चर्च में जा रहे हो प्रवचन देने के लिए, मैं भी वहीं जा रहा था प्रवचन सुनने के लिए और मुझे टॉपिक भी पता है, गॉड इज लव, जीसस के ये वचन है, तुम उसी पर प्रवचन देने जा रहे हो, पर देख लो मैं यहां घायल हूं, किसी ने मुझे मार दिया और यहां गिरा दिया, नहीं तो मैं भी वहीं जा रहा था। पर एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं बच गया तो सारे गांव में खबर कर दूंगा कि तुम जा तो रहे हो प्रवचन देने, गॉड इज लव, और यहां एक घायल आदमी गिरा पड़ा है और तुम उसको देखते भी नहीं, इसका मतलब तुम्हारा प्रवचन झूठा है। तो वो पादरी एकदम से घबराया जब ये बात सुनी, क्योंकि अभी अभी इज्जत का सवाल था। तो उसको लगा कि चलो भाई इसकी थोड़ी मदद कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर बच गया तो मुसीबत हो जाएगी। तो वो उस व्यक्ति के पास पहुंचता है पादरी, और जैसे ही देखता है उसको तो एकदम जाना पहचाना सा चेहरा लगता है। वो पादरी कहता है अरे ऐसा लग रहा है तुमको कहीं देखा है। वो कहता है देखा ही होगा, क्यों नहीं देखा होगा, मेरी तस्वीर जो टंगी हुई है तुम्हारे चर्च में। वो कहता है एक मिनट जरा ठीक से देखता है, अरे हाँ। तो वो कहता है हाँ मैं वही हूं जो तुम सोच रहे हो, मैं शैतान हूं। तो बोलता है शैतान, फिर तो तुमने मरना ही चाहिए, मर जा तुम, मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं मदद करूंगा, यही तो हम चाहते हैं, सैटन माया शैतान जो भी नाम दो, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है। वो कहता है मेरी तस्वीर तुम्हारे चर्च में थी, टंगी हुई है। और तो पादरी कहता है अच्छा हो कि तुम मर जाओ, यही तो हम चाहते हैं कि संसार में प्रेम हो और माया शैतान समाप्त हो जाए। और तो उसको छोड़ के वो निकलने लगता है, तो शैतान कहता है रुक जाना जरा, सोच लो यदि मैं मर गया तो तुम्हारे धंधे का क्या होगा, मैं हूं इसलिए तो तुम्हारा धंधा चालू है, सोचो इसके बारे में थोड़ा, क्योंकि मैं अगर चला गया संसार से, बुराई माया विकार, तो तुम कैसे काम करोगे, तुम्हारी इनकम कैसे होगी। तो वो जाते समय फिर सोच में पड़ जाता है। वो कहता है बात तो सही कही इसने कि संसार से अगर शैतान ही चला जाए तो मेरा क्या होगा। तो वो कहता है कि बात तुमने सही कही है। तो वो शैतान को अपने कंधे पर लेके जाता है, अस्पताल में लेके जाता है, फिर वहां उसका इलाज कराता है, फिर उसकी देखभाल करता है, फिर उसकी संभाल करता है, फिर उसकी अच्छी खासी खातरी करता है और फिर शैतान क्या हो जाता है, फिर से तंदुरुस्त हो जाता है। तो ऐसी कहानी है माया और तुम बच्चों का। कैसा कनेक्शन है? सदा का कनेक्शन है, सदा का संबंध है। कहीं ना कहीं व्यक्ति विकारों से छूटना तो चाहता है बाहर से, परंतु अंतरतम में उन विकारों से उसे बहुत लगाव और प्यार भी है। यदि वास्तव में छूटना चाहता तो कब का छूट चुका होता, परंतु अंदर ही अंदर क्या करता है, उसको प्यार है। ये तो सब चाहते हैं कि सारे मोह से नष्ट खत्म हो जाए, परंतु कुछ मोह वो बचा के रखना चाहता है। ऊपर से तो कहता है कि ये सारे मोह व्यर्थ है, सारे मोह पतन की जड़ है, परंतु कुछ कुछ मोह पति से, पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, मित्रों से, कुछ कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से मोह बचा कर रखता है। अंदर से नहीं चाहता कि ये मोह खत्म हो जाए, उसकी पालना करता है, उसकी देखरेख करता है, उसकी खातरी करता है, उसको क्या पिलाता है, चाय और पानी। तो कल बाबा ने क्या कहा, बाप बच्चे और माया का क्या है, बहुत जबरदस्त संबंध है। परंतु संबंध कैसे बताया बाबा ने, माया का काम है आना और बच्चों का काम है भगाना, परंतु बच्चे क्या करते हैं, कुछ और कर देते हैं, माया की खातरी करते हैं, माया को पुकारते हैं, फिर माया आती है, फिर माया को क्या पिलाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं। चाय पानी पिलाना अर्थात कौन से संकल्प, अभी तो टाइम पड़ा है, अभी तो पुरुषार्थी हूँ, अभी टूलेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी समय बहुत है, ये सारे संकल्प करते हैं, माया की खातरी करते हैं, फिर माया आती है और फिर क्या हो जाते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते। ये माया के प्रभाव में आना अर्थात माया की खातरी करना। और माया भी सोचती है, क्या सोचती है, फिर इन्होंने मुझे आने दिया, ये चाहते हैं कि मैं इनका इनकी साथी बनूं। तो बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया फिर आशीष भाई इसके लिए, ट्रीटमेंट क्या बताई, बीमारी तो बता दी कि तुम खातरी करते हो, चाय पानी तुम पिलाते हो, मेहमान नवाजी तुम करते हो, हॉस्पिटैलिटी तुम्हारी है, तो क्या करना है फिर, सुनी ना सबने मुरली। बाप क्या डायरेक्शन देते हैं कि माया को आने ही नहीं दो, माया को क्या करो, दूर से ही भगा दो। और कैसे भगा दो, विधि क्या है, विधि 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 विधि, किस विधि से भगाओ, बाप से शक्ति लेकर। विधि क्या है, बाप से शक्ति लेकर माया को भगा दो, आने ही नहीं दो, वो आए फिर तुम भगाओ, फिर इसमें टाइम जाता है और तुम्हारा टाइम अमूल्य है। क्यों, क्योंकि समय कम है, क्योंकि तुम्हें विश्व परिवर्तन का कार्य करना है, क्योंकि तुम विश्व सेवक हो, इसके लिए तुम्हारा काम टाइम इसमें नहीं जाना चाहिए, टाइम बहुत अमूल्य है। तो ये कल की मुरली का बीच का पार्ट था। तो कल बाबा ने क्या क्या कहा, पहले आप बताएंगे फिर हम बताएंगे। अब कर जाना है, कल शाम की अव्यक्तवाणी जो बाबा की चली वो पूछ रहे हम, संडे की अव्यक्तवाणी नहीं पूछ रहे। जीरो हीरो और तीन, क्या तीन बधाई और तीन संबंध और सभी बताएंगे। पीछे से एक आवाज कम आ रहा है, पीछे से स्क्रू कौन सा, स्क्रू कौन सा है, प्रतिज्ञा तो स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू कौन सा है और मेरा बाबा अच्छा, रात और अमृत वेला और व्रत और तीन प्रकार के झंडे, तीन प्रकार के, तीन प्रकार के झंडे नहीं है वो प्रत्यक्षता है और हाँ और डबल पुरुषार्थी और गिफ्ट देनी और लेनी है, कौन सी गिफ्ट, दृढ़ता की, अच्छा और संतोष भाई क्या बताया बाबा ने, कुमार कुमारियों को हाथ उठाया और नींद का त्याग करो, कौन सी नींद का, अज्ञान की और कुमारियों के ऊपर माया आती है, कौन सी माया आती है, आती तो नहीं है, पूछा और भक्त एक दिन का रखते हैं, फिर चूहे को याद किया, स्क्रू ड्राइवर को याद किया और हाँ वो सुबह की है, शाम की और हाँ चूहा का क्या, तो क्या करता है, काटता है तो और सूक्ष्म विकार और विश्व सेवाधारी और विश्व परिवर्तक और कमलेश भाई तेरा मेरा, अरविंद भाई कुमारों के लिए क्या, क्या माया जी तो वर्ड ही नहीं है, कुमारों को क्या, चलो अभी नाम लेके चालू करेंगे एक एक, हीना बहन हमारा हो गया श्याम भाई कोटो में कोई, कोई में कोई और देवेंद्र भाई नई पॉइंट बताओ, वावा के गीत और कुमारों को थकना नहीं है, वरदानों की झोली और निखिलेश भाई हीरे तुल्य जीवन, निखिलेश भाई जल्दी जल्दी बताओ, वैभव बताओ, वैभव भाई मर्यादा पुरुषोत्तम और पवित्रता की प्रतिज्ञा, खान पान की शुद्धि और जागरण, जागरण अमृत वेला, हरि भाई क्या समाचार था मुरली में, शाहू भाई क्या समाचार था मुरली में, तो मुरली से कुछ बातें हम लेंगे, टोटल 8 बातें, ठीक है। सबसे पहली बात थी जीरो हीरो का बर्थडे, जीरो और हीरो का, जीरो हीरो बर्थडे, इसमें बाबा ने कहा आज जीरो बाप किससे मिलने आए हैं, हीरो बच्चों से मिलने आए हैं, बाप क्या है, जीरो है, जीरो क्यों है, सुशील भाई आज इसके ऊपर आपको चिंतन करना है, जीरो जो है उसका क्या महत्व है, शून्य जो अंक है ये अंक है या संख्या है, शून्य का इतिहास में क्या महत्व है, शून्य का विज्ञान में क्या महत्व है, शून्य का गणित में क्या महत्व है, शून्य का धर्म में क्या महत्व है, शून्य का आर्थिक व्यवस्था में क्या महत्व है, शून्य से क्या क्या होता है, शून्य में धर्म में आज तक शून्य के विषय में क्या क्या कहा गया है, बाबा अपने आप को जीरो क्यों कह रहा है, ये जीरो का इन्वेंशन किसने किया है, जीरो क्या होता है, जीरो किसका प्रतीक है, चिंतन करो जीरो के ऊपर, ये जीरो है क्या, जीरो इंडिकेट्स कंप्लीटनेस कहा गया है, जीरो संपूर्णता का प्रतीक माना गया है, शून्यवाद क्या है बुद्ध का, बुद्ध ने अपने वाद को शून्यवाद क्यों कहा, ये शून्य जो है, मैथमेटिशियन हमारे सामने बैठे हुए वैभव भाई ये तो इस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं कि शून्य कभी ऐसा सुना है, हाफ जीरो अर्थात शून्य संपूर्णता का प्रतीक है, देयर इज नथिंग कॉल्ड हाफ जीरो, क्योंकि शून्य एम्प्टीनेस का भी प्रतीक है, जहां एम्प्टीनेस है वहीं पर टोटलनेस है, टोटलिटी वहीं पर है, शून्य के साथ बहुत कुछ किया गया है, शून्य को बीच से काटो तो क्या कहा जाता है, किसका प्रतीक है वो, शून्य और ऐसी लाइन देते हैं डॉलर और बहुत सारी चीजें शून्य के साथ जुड़ी हुई। चिंतन का विषय है भगवान शून्य क्यों है, क्या ये उसकी महिमा है, क्या उसकी ये कीर्ति है या अपकीर्ति है, क्या है। भगवान खुद कह रहा है मैं शून्य। बाप हीरो बच्चे से मिलने आए, राइमिंग कर रहा है बस। क्या राइमिंग के पीछे भी कोई राज नहीं है, क्या केवल ये राइमिंग है, क्या जीरो इतना ही अर्थ है। व्हाट इज जीरो, वो जीरो क्या है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है, वह संपूर्ण है, वह जीरो अर्थात संपूर्णता। उस संपूर्णता में से संपूर्ण निकाल दो तो जो बचेगा वो भी संपूर्ण है, ऐसे ईशो उपनिषद में लिखा हुआ है। 108 उपनिषद, उसमें 11 उपनिषद सबसे मुख्य, उसमें सबसे मुख्य यदि कोई एक उपनिषद है वो ईशो उपनिषद है। ईशो उपनिषद की शुरुआत ही वहां से है, ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज जीरो बाप अपने जीरो बच्चों से, अपने हीरो बच्चों से मिलने आया, जीरो बच्चों से भी मिलने आया है, क्योंकि बच्चे भी बाप समान है। तो जीरो सो हीरो। तीन प्रकार की मुबारक और तीन प्रकार की बधाइयां, बाप टीचर और सदगुरु के संबंध से बाबा क्या दे रहे, तीन मुबारक दे रहे और तीन बधाइया है। तीन बधाइया है पालना पढ़ाई और वरदान। मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं, मैं तुम्हारा टीचर भी हूं, तुम्हारा सदगुरु भी मैं ही हूं। तो जो पढ़ाई वो पढ़ा रहा है उसका हमें कितना अनुभव है, जो पालना वो दे रहा है उस पालना का कितना अनुभव है, और जो वरदान वो दे रहा है उस वरदान को हमने जीवन में कितना धारण किया है, इसके ऊपर चिंतन करना है। जीरो के ऊपर चिंतन करो, उसके तीन रूपों के ऊपर चिंतन करो, और वो तीन रूप से हमें तीन कौन कौन सी चीजें दे रहा है, तीन बधाई या तीन मुबारक, उस पर चिंतन करो। यदि भगवान मेरी पालना कर रहा है, क्या मैं उस पालना से क्या बना हूं। सस्टेनेंस भगवान से मिल रहा है, जिन आत्माओं ने भगवान से पालना ली। अरे संसार में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से जब निकलता है तो कितनी महिमा होती है उसकी, पिलानी से निकला है, आईआईटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ये उठाया है, डिग्री मिली है, ऑक्सफोर्ड से डिग्री ली हुई है, यूएसए से ये किया है, ये यूनिवर्सिटी से किया है, कितना उसका मान होता है। लोग लगाते हैं एमडी, नीचे लिखते हैं मुंबई। छोटे मोटे गांव से किया होगा तो नहीं लिखेंगे, सारी शिक्षा दूसरी जगह की और एक दो महीने के लिए मुंबई गए तो मुंबई लिख देंगे जरूर, डॉक्टरों को जरूर देखेंगे आपको दिखते हुए। तो उसका कितना नशा रहता है। जीरो हीरो, जीरो बाप अपने हीरो बच्चों को देख रहा है, किस रूप में देख रहा है, बाप टीचर सदगुरु के रूप में देख रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी मुबारक दे रहा है, पालना पढ़ाई और वरदान की। ये मुरली का सबसे पहला पॉइंट। सेकंड, ब्राह्मण जन, फ्रॉम इन बर्थ, ये जन्म कैसा है। सारे 84 जन्मों में ऐसा जन्म कभी नहीं होगा, ये न्यारा जन्म है, ये प्यारा जन्म है, ये स्नेही जन्म है और ये हीरे तुल्य जन्म है। चार शब्दों कहे बाबा ने, न्यारा है, सबसे भिन्न है, सबसे न्यारा, सबसे निराला, प्यारा जन्म है क्योंकि भगवान साथ है, ये हीरे तुल्य है और ये स्नेही जन्म है। नहीं आगे भी बोला है, परंतु जन्म के लिए बाबा ने कहा ये स्नेही जन्म है। तो दूसरी बात है जन्म के विषय में, ब्राह्मण अर्थात द्विज, ब्राह्मण अर्थात जिसका दूसरा जन्म हुआ है, ये हमारा वो जन्म नहीं है, एक था शूद्र जन्म जिसमें जो कुछ किया वो सब शूद्र जन्म का था। अब ये जन्म लेने के बाद में यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, जन्म ही धारण किया है हमने, तो ये नया जन्म है। नए जन्म में पुराने जन्म की, विकारी जन्म की पुरानी कोई बातें नहीं होनी चाहिए, यहां सारी नई बातें, पवित्र जन्म है, न्यारा प्यारा हीरे तुल्य और स्नेही जन्म है। इस जन्म की महिमा को अंदर ही अंदर गाते रहना, अपने आप को रिमाइंड कराते रहना कि मेरा ये वो जन्म नहीं है जो मैं पहले था, वो व्यक्ति मर चुका है, ये दूसरा है, ये वो नहीं, ये नया है। तो दूसरी पॉइंट थी ब्राह्मण जन्म। तीसरी पॉइंट अविनाशी स्नेह और साथ, इम्पेरिशेबल लव एंड कंपनी। अविनाशी स्नेह और साथ, बाबा ने कहा तुम्हारा जो साथ है बाबा के साथ वो कैसा है, आदि से अंत तक तुम साथ में हो, अभी साथ हो, विश्व परिवर्तन के कार्य में साथ हो, जाएंगे साथ और फिर वापस ब्रह्मा के साथ आएंगे साथ, सब कुछ साथ है। क्या वास्तव में है? स्वयं से पूछना है, क्या ऐसा अनुभव होता है कि निरंतर साथ है, आए थे साथ, सारे जन्म साथ, अभी साथ, विश्व परिवर्तन के कार्य में साथ, जाएंगे साथ और आएंगे साथ, वहां के संस्कार यहां भरने हैं। साथ का कितना अनुभव है, क्या वो महसूस होता है इनविजिबल प्रेजेंस, कि वो साथ साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, वो मेरे साथ है, उसकी छत्र छाया है, संडे की मुरली कैसे पले बड़े, वरदान छत्र छाया है, वरदान वर्षा है, जब से जन्म हुआ तब से वरदानों की वर्षा हो रही है। साथ, निरंतर साथ रहने का अभ्यास, ये दूसरा काम दिया बाबा ने कल की मुरली में। तीसरा, चौथा, वरदानों की झोली, एप्रन ऑफ ब्लेसिंग्स। तुम्हारी शिवरात्रि और उनकी शिवरात्रि में क्या अंतर है? उनकी रात्रि है, तुम्हारा अमृत वेला है, यहां पर तुम्हें अमृत वेले तुम्हारे ऊपर क्या हो रही है, वरदानों से तुम्हारी झोली भर रही है। कितने वरदान दिए बाबा ने पूछे, अगिनत, अगणित वरदान है, गिनती नहीं कर सकते, नंबरलेस इन्यूमरेबल वरदान ब्लेसिंग्स तुमको मिले है। हमारी झोली कितने वरदानों से भरी है? संसार में यदि किसी व्यक्ति को बहुत तपस्या करता है और कोई वरदान मिल जाता है तो कितना खुश हो जाता है, जो कथाओं में दिखाया है, कुछ भी वरदान मिल जाए उसका बहुत उपयोग करता है, गलत या जो भी करना है। यहां हमें रोज अमृत वेला भगवान से वरदानों से हमारी झोली भर रही है, तो वरदानों की झोली। नेक्स्ट, अमृत वेला भरना है, वैसे उस दिन कहा ना सारा संगम युग ही अमृत वेला है, शुभ दिन, शुभ रात्रि, शुभ सवेरा, बाप आते गुड मॉर्निंग में, जाते गुड मॉर्निंग में, तुम दिन में चले जाते हो, तुम ब्रह्मा के दिन में रहते हो, बापा न्यारा हो जाता है, तो सारा दिन ही अमृत वेला यदि है तो सारा दिन ही वरदानों का अनुभव करना है। चौथा, पांचवा कैसे, चौथा पूरा हुआ, अच्छा पांचवा है कोटो में कोई लवली और लकी, कैसे हो तुम, लवली और लकी समान दिया है बाबा ने, तुम लवली और लकी आत्माएं हो, कोटो में कोई हो और कोई में कोई, इस पॉइंट को हम नाम देंगे अविनाशी नशा। एक बताया, दो तीन नंबर अविनाशी प्रेम स्नेह और साथ, ये है अविनाशी नशा, इंटॉक्सिकेशन। क्या तुम्हें इसका अविनाशी नशा रहता है कि हमें भगवान ने चुना है, इतनी असंख्य आत्माएं थी उसमें से मुझे चुना, इसका अविनाशी नशा रहना चाहिए। और ये नशा बहुत सूक्ष्म है, इसका गहन चिंतन करेंगे तब कहीं ये नशा धीरे धीरे इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि वो स्वमान में रूपांतरित हो जाएगा। केवल ये कहते रहना मैं कोटो में कोई, कोई में कोई, ये तो स्थूल है, परंतु ये नशा जब सूक्ष्म हो जाता है तब उसे स्वमान कहा जाता है। तो अपने नशे को क्या कर दो, सुमन बना दो। नक्शे की सूक्ष्म अवस्था ही सुमन की परिभाषा है। तो पांचवा क्या है? अविनाशी नशा। छठवा, माया का पेपर और माया की खातरी। माया का पेपर और माया की खातरी, हॉस्पिटैलिटी, इसके विषय में हमने बता दिया। माया को समीप ही नहीं आने दो, माया को दूर से ही भगा दो। कैसे भगाएंगे? बाप से शक्तियां लो और माया को पहले ही भगा दो। इसमें टाइम नहीं लगाओ, फिर माया आएगी, फिर उसको फिर भगाओगे, क्योंकि तुम्हारा चाय पानी पिलाओगे, उसकी खातरी करोगे, उसको भी अच्छा लगेगा, वो रह जाएगी। तुमको तो तुम्हारा समय बहुत अमूल्य है, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि विश्व सेवाधारी हो, विश्व परिवर्तन करना इतना बड़ा महान कार्य है, इसलिए तुम अलबेले नहीं हो सकते। तो ये कौन सी थी? छठवीं पॉइंट। सातवीं पॉइंट है शिवरात्रि। शिवरात्रि की तीन बातें, शिवरात्रि के तीन गिफ्ट, तीन शिवरात्रि की तीन बातें, शिवरात्रि के तीन गिफ्ट, वो लेने भी है देने भी है। कौन से गिफ्ट है? दो व्रत और एक जागरण। तीन बातों में दो व्रत और एक जागरण। सबसे पहला व्रत, व्रत उपवास, दूसरा व्रत खानपान, तीसरा जागरण। ये तीन बातें बताई। पहला व्रत है संपूर्ण ब्रह्मचारी का, संपूर्ण पवित्रता का। तुम्हारा टाइटल ही क्या है? बाबा ने कहा संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, ये तुम्हारा टाइटल है। बड़े बड़े को तो जीत लेते हो, परंतु छोटे छोटे रह जाते हो, और छोटे ही क्या बन जाते हैं? फिर महाबली बन जाते हैं। चूहे का उदाहरण दिया, काटता है बहुत युक्ति से, फूक मारता है, काटता है, पता ही नहीं चलने देता है। इसके लिए छोटों को हल्का नहीं समझो, वो अंश क्या हो जाएगा? वो अंश वंश को जन्म देगा। इसके लिए केवल ब्रह्मचारी भी नहीं, ये व्रत तो वो संसार के लोग भी करते हैं, उनका एक दिन के लिए, तुम्हारा सारे जीवन के लिए। तो व्रत अर्थात विकार, छोटे बड़े सारे सबका उपवास, ये है व्रत, ये है शिवरात्रि, ये है बाबा की, ये है गिफ्ट बाबा जो दे रहे हैं, और हमको दूसरों को भी देनी है। ये देनी भी है लेनी भी है। बाबा ने कहा ये जो सौगात है, देना और लेना दोनों करना है। तो पहली सौगात क्या है? संपूर्ण पवित्रता, पहला व्रत। दूसरा व्रत खान पान का, उसके लिए एक शब्द बाबा ने जोड़ा, विधि पूर्वक खान पान। ये व्रत कुमारों से पूछा, कुमारियों से पूछा, त्याग करना पड़ेगा, परंतु मोहब्बत में त्याग भी क्या है? मोहब्बत में मेहनत भी कुछ नहीं है, परंतु त्याग करोगे तो भाग्य भी बनेगा। बाबा ने हाथ उठवाया है, कौन ऐसे कुमार है जो विधि पूर्वक भोजन करते हैं, खान पान की शुद्धि रखते हैं? टॉपिक तो वो बहुत बड़ा है, उसकी यहां चर्चा नहीं करेंगे, परंतु विधि पूर्वक भोजन अर्थात वो भोजन कहां से आ रहा है, किन पैसों से आ रहा है, कमाई एक नंबर की है, दो नंबर की है, किसी का शोषण तो नहीं हो रहा है, किसी को दुख देकर पैसे तो नहीं कमा रहे, एक। दूसरा, भोजन जो बन रहा है उसमें कितनी शुद्धि है, क्या है वो? राजसिक है, सात्विक है, तमोगुणी है, क्या है? वो छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, वो सारा छोड़ दिया, पर ये जो है इसमें ऐसे तत्व तो नहीं है, इतना गरिष्ठ तो नहीं है कि वासनाओं को प्रदीप्त करे, एक्साइटमेंट लाने वाला तो नहीं है, कितना वो सादा है, योगियों का है या भोगियों का है? खाने के बाद निद्रा प्रमाद के वश हो जाते हैं, क्या होता है? ये भोजन की शुद्धि। दूसरा, तीसरा, भोजन बनाते समय कौन से संकल्प है, किस संकल्पों के साथ, किन विचारों के साथ भोजन बनाया जा रहा है, और चौथा, किन विचारों के साथ उसे खाया जा रहा है, चौका। भारत में चौका कहते हैं किचन को, चार चीजें चाहिए, इसलिए। और फिर उसे भोग, वो दूसरी बातें हैं, भोग कैसे लगाया जा रहा है, कि बिना भोग लगाए ही खाया जा रहा है, कितना अनन्य भाव से वो बनाया जा रहा है, किया जा रहा है, सब कुछ प्रेम है, या फिर डर के मारे कोई कहे क्या कहेगा, या फिर दिखावे के लिए, या फिर नियम, या फिर फर्ज, चार चीजें। नंबर वन पूज्य आत्मा नहीं बनेंगे फिर वो भक्त की लाइन में चले जाएंगे। नंबर वन पूज्य आत्मा अर्थात हर कर्म ऐसा हो कि उसमें दिखावा ना हो, उसमें भय ना हो, उसमें केवल फर्ज निभाने के लिए नहीं, केवल नियम निभाने के लिए, भोग लगाना है भोग लगा दिया, खाओ और चलो, काम पूरा किया है बस, फटाफट काम पूरा कर लिया, फटाफट भोजन बनाया, फटाफट इसमें डालो उसमें डालो, भोजन थाली रख दी बाबा के सामने, खा लिया बाबा, तुरंत खाने में लग गए। परंतु भाव कुछ नहीं है, इमोशन लेस, ये तो ये चार चीजें। तो दूसरा, दूसरी गिफ्ट, दूसरी सौगात, दूसरी बात है खान पान की शुद्धि, दूसरा व्रत खान पान का, विधिवत खान पान, और तीसरा कहा जागरण। वो लोग एक दिन के लिए जागते हैं, तुम्हारा अज्ञान की निद्रा से तुम जागे हो, विस्मृति की निद्रा में भी नहीं चले जाना, ये जागरण सारे जीवन का जागरण है। और जब ये जागरण होगा तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। यहां पर बाबा ने फिर से एक उदाहरण दिया झंडे का। झंडे को जब लहराया जाता है तो दो चीजें देखी जाती है, एक तो पूरा खुलना चाहिए और दूसरा खुलने के बाद फूलों की वर्षा होनी चाहिए। यहां पर भी तुमको कौन सा झंडा लहराना है, बर्थडे का, बाप का और बाप दादा का, बर्थडे का, सेवा का, प्रत्यक्षता। तो प्रत्यक्षता कब होगी, जब जागरण अखंड होगा तब बाप की प्रत्यक्षता होगी, अन्यथा प्रत्यक्षता नहीं होगी। और फिर यहां बाबा ने कहा कि संकल्प ढीला कर देते हो, तो ढीला संकल्प जैसे एक संकल्प स्क्रू है, उसका ढीला हो जाना, इस ढीले स्क्रू को फिर अब क्या करो, टाइट करो। टाइट करने का स्क्रू ड्राइवर कौन सा है, प्रतिज्ञा, ओथ, प्लेज। प्रतिज्ञा परिपक्व बनाती है, प्लेज ब्रिंग्स मैच्योरिटी, प्रगल्भता प्रतिज्ञा से आएगी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन कहानी में लिखा है 1906 में ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। अब तक ब्रह्मचर्य का केवल प्रयोग कर रहे थे विवाहित जीवन में, परंतु फिर भी कभी कभी कुछ कुछ हो रहा था। परंतु फिर एक दिन ऐसा सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1906 में दोनों ने मिलकर, कस्तूरबा और गांधी जी, प्रतिज्ञा की 1906 में। और तब से फिर उन्होंने लिखा है कि जो इम्यूनिटी फ्रॉम पैशन आई एंजॉयड नाउ आफ्टर द प्लेज इज बियॉन्ड वर्ड्स। पहले कर रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे, उधर अफ्रीका में भी कर रहे थे, परंतु प्रतिज्ञा यहां उधर से ही चालू की, पर उसके बाद में कुछ और ही हो गया। तो प्रतिज्ञा क्या है, स्क्रू ड्राइवर, इससे ढीले स्क्रू को टाइट कर दो। कहां थे, शिवरात्रि। शिवरात्रि की तीन बातें, पहली पवित्रता, पहला व्रत संपूर्ण पवित्रता का, दूसरा व्रत खान पान का, तीसरा जागरण, और जागरण के साथ ही बाबा ने जोड़ा प्रत्यक्षता को, जिसमें स्क्रू ड्राइवर बताया प्रतिज्ञा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है ब्राह्मण कल्चर। भिन्न भिन्न संस्कृति में, कल्चर में थे, उसकी एक बहुत बड़ी क्या थी, दीवार थी, उसको क्रॉस करके यहां आ गए। डबल विदेशियों से मुलाकात, डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थी, डबल विदेशी अर्थात डबल तीव्र पुरुषार्थी, डबल पुरुषार्थी अर्थात मधुबन का श्रृंगार, मधुबन का श्रृंगार, उस देश में जन्म लेके, उस संस्कृति में जन्म लेके, धर्म की दीवार को, संस्कृति की दीवार को लांग कर बाप के बन गए, कितनी बड़ी बात है। वन ब्राह्मण कल्चर, डॉक्टर हीना आपका टॉपिक, एक ब्राह्मण कल्चर, एक ब्राह्मण संस्कृति क्या है, ब्राह्मण संस्कृति क्या है, ये कौन सी संस्कृति है, क्या ये मेसोपोटामिया की संस्कृति है, मिस्र की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, क्या संस्कृति है, इंडियन संस्कृति है, कौन सी संस्कृति है ये? बाबा किस संस्कृति की बात कर रहे, क्या वो ब्राह्मणों की संस्कृति है जो संसार के ब्राह्मण है, क्या उनकी संस्कृति है सिंधु घाटी संस्कृति है, कौन सी तहजीब है, विच संस्कृति, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, चीन चाइना सिविलाइजेशन, कौन सी संस्कृति की बात चल रही है यहाँ पर? मोहनजोदड़ो हड़प्पा को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, कौन सी सभ्यता है ये? बाबा कह रहे ये एक ब्राह्मण संस्कृति है, एक ब्राह्मण कल्चर है। तो एक ब्राह्मण कल्चर क्या होता है, एक ब्राह्मण कल्चर और संसार में कौन कौन सी संस्कृति अब तक हुई है, उस संस्कृति का और इस संस्कृति में क्या अंतर है, इस संस्कृति की क्या क्या विशेषता है, इस संस्कृति जब बाबा कह रहे हैं तो इस संस्कृति को अपने अंदर हमने किस तरह धारण करना है और कितनी हमने धारण की है, उसकी पहचान क्या है, ये सारी चीजें लिखनी है। और ये संस्कृति कब स्थापन कर हो रही है, कौन स्थापन कर रहा है, और ये संस्कृति किस संस्कृति का आधार है, एक देव संस्कृति का निर्माण इस ब्राह्मण संस्कृति से होगा। कौन से घाटी में स्थापन हो रही है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये माउंट वैली सिविलाइजेशन है। तो एक ब्राह्मण आपका टॉपिक कब करोगे, इसको बताएंगे कल, होमवर्क कल दिया जाएगा, आज नहीं। तो ये टोटल मुरली में 8 बिंदु थे, फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आज सुशील भाई के लिए होमवर्क है कि जीरो का क्या महत्व है, पहला होमवर्क। अभी चलो आप नहीं, पर आप सोचो ऐसा ही कि मुझे सबको सुनाना है, तो ही टेंशन से ही व्यक्ति थोड़ा सा, थोड़ा तो टेंशन चाहिए, टेंशन के सिवा पुरुषार्थ भी तो कहाँ करता है। तो आपके लिए होमवर्क है जीरो बाप, अर्थात जीरो का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ जीरो। सारे क्षेत्रों में कम से कम 10 ऐसे क्षेत्र निकालो कि जहां पर जीरो का महत्व है, मैथमेटिक्स से लेकर तो धर्म से लेकर तो सब सारी चीजों में। एक जीरो बाप, तो यहाँ 3 बातें बताई, वरदान पालना और पढ़ाई, कितनी धारण की है, 3 बधाई या 3 मुबारक बाप दे रहे हैं, जीरो बाप हीरो बच्चों को देख रहे हैं, पहला होमवर्क। दूसरा ब्राह्मण जन्म, तो वैभव ये आपके लिए होमवर्क है, ब्राह्मण जन्म के क्या महत्व है, ब्राह्मण जन्म के 108 पॉइंट्स, ब्राह्मण जन्म के 108 पॉइंट्स। तो ब्राह्मण जन्म यहाँ क्या बताया बाबा ने, ब्राह्मण जन्म कैसा है, न्यारा प्यारा स्नेही और हीरे तुल्य, ये 4 छोड़कर, ठीक है ना, है अमूल्य। तीसरा 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 पॉइंट है अविनाशी स्नेह, ये अविनाशी स्नेह और साथ, तो कौन लेगा, जो मधुबन से नहीं है बाहर से है, विदेश वाले हाथ खड़े करो कोई भी, ये लिखना है खाली, सुनाना नहीं है। कहाँ, क्या नाम आपका, कहाँ से, यूएसए से, सियानी बहन, आपको लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पेरिशेबल डिवाइन लव, इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पेरिशेबल डिवाइन लव, व्हाट डज द इम्पेरिशेबल लव डज टू सोल, व्हाट हैपेंस टू द सोल व्हेन द सोल अचीव दिस इम्पेरिशेबल डिवाइन सेक्रोसैंक प्योर अनकंटेमिनेटेड लव ऑफ गॉड। इसके आप कितने पॉइंट, 51 पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है अविनाशी नशा, कोई विदेश से और हाथ खड़े करो अपने आप, अच्छा वरदानों की झोली, कौन लिखेगा, हाँ बाबा ने जो वरदान दिए हैं उसको हाउ टू ट्रांसलेट देम इनटू रियलिटी, उसको जीवन में कैसे धारण करें, इसकी 21 पॉइंट्स लिखनी है। बाबा ने जो वरदान हमें दिए हैं हाउ टू ट्रांसलेट दोज वरदान दैट दोज ब्लेसिंग्स इनटू प्रैक्टिस, हाउ टू मटेरियलाइज द डिवाइन ब्लेसिंग्स, उस पर लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है अविनाशी नशा, जो बाहर से आए हैं विदेश से, कोई भी हाथ खड़े करो, क्या नाम, कहाँ से? अवंती बहन, यूके से। एक व्यक्ति जिसे नशा चढ़ा हो, ऐसा जो रूहानी पियक्कड़ है, स्पिरिचुअली इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति के लक्षण क्या क्या है? द वन हु हैज ड्रंक ऑफ डिवाइन एक्स्टेसी, द वन हु इज ड्रंक ऑफ डिवाइन नेक्टर, व्हाट आर द साइंस, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दैट पर्सन? कितने? 21 पॉइंट्स। ठीक है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है, क्या करता है, कैसा नशा होता है, स्मृति कैसी होती है, अवेयरनेस कौन सी होती है, इमेजिनेशन कौन सी होती है, क्या क्या उसको लगता है, वो सारी बातें लिखनी है। साइंस ऑफ स्पिरिचुअली इनेब्रिएटेड सोल, साइंस ऑफ स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन। अगला, माया का पेपर और माया की खातरी। विदेश से कोई आया है वो हाथ खड़े करो, कोई भी। अच्छा चलो, भारत वाले पर मधुबन से जो नहीं है वो इंडियन इंडियन विदेशी, सिंगल विदेशी, सिंगल विदेशी, सिंगल विदेशी, अशोक भाई कोई भी हाथ तो खड़ा कर दो। हाँ जी बहन जी, हाथ खड़ा कर दो। हाँ बस आप ले लो। ये बच्चे माया की कौन कौन सी खातरी करते हैं? What has hospitality we do to Maya? हम माया की किस तरह से खातरी करते हैं, इस पर लिखने हैं 10 पॉइंट। ठीक है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है कि माया की को दूर से ही कैसे भगाए। ये कौन लिखेगा? अरविंद भाई। दूर से ही, आने के बाद नहीं, दूर से ही। माया मतलब अभी दूर दिख रहे है, उसकी पदचाप सुनाई दे रही है, घोड़ों की आवाज आ रही है कि माया घोड़े पर बैठ कर आ रही है, तभी से उसको कैसे भगाए, इसकी पॉइंट लिखनी है। वही वो आवाज कई कभी कभी कान धरती पर लगाते हैं। पुराने जमाने में कान ऐसे धरती पर लगाते थे और सुनते थे कि कोई शत्रु आ रहा है, तो वो माया आ रही है, उसको दूर से ही कैसे भगाए, इस पर स्निफर तो माया को दूर से ही कैसे सूंघ लो कि ये माया है, और उसको दूर से ही कैसे भगा दो, हाउ टू वार्ड ऑफ माया फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, ये पॉइंट। फिर नेक्स्ट है शिवरात्रि, इसका हम लेंगे कल, आज लेना चाहिए था टॉपिक, परंतु कल हम शिवरात्रि का एक टॉपिक ले रहे हैं। कल पूरी क्लास शिवरात्रि पर होगी, शिवरात्रि का क्या महत्व है। क्लास का नाम होगा ओम नमः शिवाय, इंग्लिश नहीं हिंदी तो उसमें शिवरात्रि का क्या महत्व है, शिवरात्रि में संसार क्या करता है, हम क्या करते हैं, बाबा ने अब तक सारी अव्यक्त वाणियों में शिवरात्रि के विषय में क्या क्या बताया है। यहाँ पर खाली दो बातें बताई, एक तो व्रत बताया और एक जागरण बताया, परंतु हाँ क्या क्या हाँ अच्छा तो हमारा डिवाइन, हमारा लवर तो शिव है ना, तो उसके साथ हम शिवरात्रि मनाएंगे डिवाइन लवर के साथ वैलेंटाइन डे में। और लास्ट लास्ट है क्या क्या, ही इज द पिलर, ही इज द बिलवेड। परंतु एक अव्यक्त वाणी है, आज तक हमने एक अव्यक्त वाणी ही देखी जिसमें बाबा ने खुद को आशिक कहा है, वो मुझे डेट याद नहीं है, परंतु वो एक ही मुरली है। हमेशा बाबा कहते हैं मैं माशूक हूँ, तुम सब मेरे आशिक हो, परंतु एक ऐसी मुरली है डबल विदेशियों से मुलाकात, जिसमें बाबा ने कहा है बाप आशिक है। वो एक मुरली है जिसमें बाबा ने स्वयं को आशिक भी कहा है, नहीं तो हमेशा बाबा ने माशूक ही कहा है बाय डिफॉल्ट। ऐसी शायद ही कोई मुरली है कि जिसमें बाबा ने कहा है मैं माशूक हूँ, मैं आशिक हूँ, पर वो है कि जिसमें कहा फादर इज लवर एंड यू आर बिलवेड। लास्ट ब्राह्मण कल्चर, ब्राह्मण, एक ब्राह्मण कल्चर क्या है, कैसा होता है, फाउंडेशन क्या है इस कल्चर का, कल्चर में कौन सी बातें हैं, और क्या इस कल्चर में भी कुछ कंटेमिनेशन हुआ है, जैसे बाकी सभ्यता में इंटरपोलेशन हुआ है, क्या इस सभ्यता में भी ऐसा हुआ है, क्या ये सभ्यता भी सतो रजो तमो से गुजरती है जैसे वो सभ्यता है सारी सत्व जो तमो की गुजरी है, क्या इसमें भी ऐसा होता है, ये सब बातें लिखनी है। तो ये थी कल की अव्यक्त वाणी और उससे निकाले 8 होमवर्क। ठीक है, ओम शांति। हाँ, बाबा ने तो वो प्रश्न पूछा था कि जब कहा था कि ऐसे ऐसे करते हैं, नींद आती है, जागरण के लिए कहा था, बच्चों को ऐसी ऐसी नींद आती है, बाबा ने करके दिखाया था। तो अमृत वेला जागरण में बैठना है, जैसे भोजन करते करते आंखें बंद करके भोजन करते हो क्या? भोजन आंखें फाड़ फाड़ के भोजन करते हो ना, वैसे आंखें फाड़ फाड़ के बाबा से योग करना और बातें करना, ये बात याद रखना। उदाहरण ये, भोजन कभी आंखें बंद करके किसी को देखा भोजन करते हुए आज तक? तो जैसे आंखें खुली रहती और फाड़ फाड़ के भोजन करते हो ना, तो वैसे आंखें फाड़ फाड़ के बाबा से योग लगाना, आंखें बंद करके नहीं। क्या कर रहे हैं किसको ही नहीं पता है, हम क्या कर रहे हैं हमको भी नहीं पता, कब नींद लग गई और कब गिरे इधर उधर। ठीक है, ओम शांति।